چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہے، اڑ چلے یہ پرندے، حوصلے اب جوان ہے، نہ رکے گا یہ کاروان، دور ہم سے نہیں اب آسمان، ہے قدم سے قدم مل چلے، آپ ہے ساتھ میں جب چلے، ہے امنگ ہے اللہ، ایک نئی سوچ، نیا
ملے گی پرندوں کو منزل، ملے گی پرندوں کو منزل، یہ ان کے پر بولتے ہیں، کچھ لوگ رہتے ہیں خاموش مگر ان کے ہنر بولتے ہیں۔ نمسکار، میں ہوں امت وادھوا، نئی سوچ نیا وشواس کارکرم میں آپ کا ہاردک سواگت ہے۔ دوستوں، پچھلی کڑی میں سورگ اور نرک کو لے کر ہمارے من میں جو بھرانتیاں تھیں، اوشا دیدی جی نے ان بھرانتیوں کو دور کیا، نگر بھوشیہ میں آنے والے ستیوگ سے ہمارا پرچے کرایا اور ہماری کلپناوں کو ایک نیا آکاش دیا۔ آج بھی ہم اس چرچا کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے سرشٹی کے کال چکر کے بارے میں، اور اس کے لیے ایک بار پھر ہم اس منچ پر آمنترت کرتے ہیں ورشٹھ راجیوگ شکشکا راجیوگنی برہما کماری اوشا دیدی جی کو۔ دیدی، میں اپنی اور اپنے درشکوں کی اور سے آپ کا ہاردک سواگت کرتا ہوں۔
اوم شانتی۔
دیدی، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں آنے والے ستیوگ کے بارے میں بتایا اور نرک کو لے کر کے ہمارے من میں جو مس کنسپشنز تھے وہ بھی آپ نے دور کیے، مگر ایک پرشن ہے کلیوگ کو لے کر۔ شاستروں میں کلیوگ کو لے کر کے کہا گیا ہے کہ کلیوگ لاکھوں ورش کا ہے اور کلیوگ تو ابھی بچہ ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ کلیوگ ختم ہونے والا ہے، تو اس کی کیا پشتی ہے؟
یہ تو صحیح کہا ہے کہ शास्त्रों अनुसार ही देखा जाए, अगर आप शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो शास्त्र अनुसार ही देखा जाए कि गरुड़ पुराण में जो कलयुग के धर्म ग्लाने के लक्षण दिखाए हुए हैं, ये प्रैक्टिकल इस समय दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अनाज पुड़ियों में बिकेगा, केशों का श्रृंगार होगा, नीति बिना राजनीति होगी, नैतिकता का पतन, चारित्रिक पतन, इस तरह के कई लक्षण जो दिखाए हैं तो वर्तमान समय में देख रहे हैं
जी।
जैसे सारे लक्षणों का तो मैं वर्णन नहीं करूंगी, लेकिन एक लक्षण मुझे बहुत अच्छा हमेशा लगता है कि कलयुग का अंत कब समझना चाहिए। तो उसमें लिखा गया है कि कलयुग का अंत तब समझना चाहिए जब चार कुएं का पानी एक कुएं में भर जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी चार कुएं में नहीं भरेगा, तब समझना कि कलयुग का यह अंतिम समय है। मनुष्य सोचता है चार कुएं का पानी अगर एक कुएं में भर गया तो क्या एक का पानी चार में नहीं भरेगा? नहीं, कलयुग के अंत में नहीं भरेगा, क्योंकि वो जड़ कुएं की बात नहीं है, चेतन कुएं की बात है कि आज एक मात पिता
जी
चार बच्चे के पानी को अपने में समा लेते हैं, यानी उनके जो भी खर्चे आदि जो भी बातें हैं उन सब कुछ अपने कुएं में जितना है उसी में समा लेंगे
जी।
लेकिन जब एक मात पिता को समाना आता है तो चार कुएं मिलकर के नहीं समा सकते हैं,
यानी
चार बच्चे एक मात पिता को नहीं संभाल सकते हैं, या तो मात पिता को ही अलग कर देंगे या तो कहेंगे कि भाई वृद्धाश्रम में जाकर के रहो
जी।
आज जो वृद्धाश्रम में बच्चे मां बाप को छोड़ करके आते हैं, उन मात पिता की हालत अगर देखी जाए कि आज बच्चों के पास सारे भौतिक सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी माता पिता की हालत क्या है, तो यह स्पष्ट बताता है कि ये कलयुग का अंतिम समय ही तो है
जी।
नहीं तो आज मदर टेरेसा क्यों बनती थी? मदर टेरेसा सिस्टर टेरेसा थी, एक मिशनरी स्कूल चलाती थी
जी।
लेकिन एक दिन कहा जाता है कि वो अपनी कुछ बहनों के साथ मॉर्निंग वॉक पर गई थी
जी।
और वहां पर उन्हें एक बहुत दर्द भरी सिसकने की आवाज सुनाई थी। चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। उस दिशा में आगे बढ़े तो देखा कि किचड़े के डब्बे में एक आदमी पड़ा है और वो कुष्ठ रोगी था। और इस हालत में वो अंदर में पड़ा हुआ था कि चूहे उसके शरीर को नोच रहे थे। मदर टेरेसा ने जब इसकी हालत देखी, ऐसी दयनीय स्थिति थी, जो उसको बाहर निकाला और उसको पूछा तू अंदर कैसे चला गया? उस वक्त वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि जब से मुझे ये बीमारी हुई तब से लेकर के मैंने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं देखा, और आज मेरे बच्चे भी मेरे से तंग हो गए कि कल रात को मेरे बेटे ने आकर मुझे किचड़े के डब्बे में फेंक दिया कि मर जा बुढ़ा, ऐसे रोग से तुम हमें भी इसके शिकार बना देगा करके मुझे फेंक के गए। मौत भी कैसी है कि आधा शरीर चूहों ने खा लिया, उसके बाद भी मुझे मौत नहीं आती है। और वो इतना रो रहा था, यही चीज ने उसके हृदय को परिवर्तन किया। उसने अपने मिशनरी वालों को जाकर के बताया कि हमें ऐसे लोगों के लिए भी कुछ करना होगा। तब उनके मिशनरी वालों ने कहा कि हम यहां आए हैं स्कूल चलाने के लिए
जी,
शिक्षा देने के लिए, ये कार्य के लिए हम नहीं आए हैं। उसी वक्त कहा जाता है कि मदर टेरेसा ने उस मिशनरी को छोड़ करके अपनी एक संस्था बनाई
जी,
के जहां पर इन लोगों की सेवा करने का दृढ़ संकल्प उसने किया। भावार्थ मेरा ये है कि आज ये हाइट्स है
जी।
और इसीलिए अब हर एक व्यक्ति के मुख से भी यही निकलता है कि हे प्रभु, ये दुनिया कब तक चलेगी? अब तो घोर पापाचार की दुनिया है, अब ये दुनिया कब तक चलेगी? तो त्राहिमाम हो रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने आकर के जो बताया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है
जी।
और अभी भी अगर हम कलयुग को बच्चा समझे तो वृद्धावस्था में क्या होगा, सोचने की बात है
जी। जी,
अति है ये। इसीलिए जहां अति है तो अंत निश्चित है। तो कहने का भावार्थ के जैसे कोई बात पढ़ते पढ़ते कई बार शब्द फेर हो जाता है, इसी तरह कलयुग अभी बच्चा नहीं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ही अगर देखा जाए तो सारे धर्म ग्लानि के लक्षण देखते हुए तो अब कलयुग थोड़ा सा बचा है। तो खाली ब्रह्मा कुमारी कह रही है ये नहीं, शास्त्रों के अनुसार भी अभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता कलयुग के लिए अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है।
जी हाँ दोस्तों, सुनने से स्पष्ट ये महसूसता आती है कि आज कलयुग बच्चा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बच्चे की अवस्था में हमें चारों ओर ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो फिर जैसा दीदी ने कहा कि वृद्धावस्था जब कलयुग की आएगी तो क्या हाल होगा। दीदी, अपनी कुछ जिज्ञासाएं लिए हमारे दर्शक भी हमारे बीच में मौजूद हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं।
दीदी जी, मेरा नाम विपुल है, मेरा एक प्रश्न है आपसे। आपकी संस्था में कहा जाता है कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है, क्या आपके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण है?
देखो, अगर ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से हम अपना 5000 साल की बात आपके सामने रखेंगे तो शायद आप यही मानेंगे कि दुनिया के अंदर क्या प्रमाण है। तो मैं पहले दुनिया का प्रमाण दिखाना चाहती हूं कि दुनिया के अंदर हर साइकिल की एक अवधि होती है। जैसे दिन और रात का चक्र है, उस चक्र की भी एक अवधि है कि 24 घंटे हैं। 60 सेकंड का एक मिनट बनता है, 60 मिनट का एक घंटा बनता है और ऐसे 24 घंटे का ये चक्र है। इसी तरह ऋतुओं का चक्र देखो तो उसमें भी एक अवधि है, एक साल। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। वैसे अगर पूछा जाए तो 24 घंटे का भी कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है कि जिस व्यक्ति ने भी ये कैलकुलेट किया, ये 60 फिगर कहां से लाया, किस बेसिस पर लाया। 100 सेकंड की अगर एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था, 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते थे। ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 20 घंटे में बांटे, 22 घंटे में बांटे या 24 घंटे में बांटे। लेकिन हमने वहां कभी सवाल नहीं किया। 5000 के लिए सवाल उत्पन्न होता है। वैसे उसका हमारे पास सबूत है। अगर हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत के अंदर बात आती है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितना साल हुआ, 5000 साल कहेंगे। और उस महाभारत के लास्ट चैप्टर में यह बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना कि महाभारत काल पुनः आ गया। और आज प्रैक्टिकल क्या दिखाई देता है, घर घर के अंदर महाभारत चल रहा है, चल रहा है ना बच्चे। इसी तरह आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है
जी,
के जो घर घर में आग लगा रहे हैं, तो वही काल पुनः आ गया ना, तो हो गया ना 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है
जी।
और उनके हिसाब से भी अब कयामत का समय आ रहा है। क्रिश्चियन धर्म शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहते क्राइस्ट के 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणी के हिसाब से देखा जाए तो गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हो गया 5000 साल, 3000 और 2000। मायन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाता है कि उनका कैलेंडर भी 5000 साल का दिखाया गया है
जी,
है ना। तो हर धर्म के हिसाब से 5000 की बात जरूर आती है, लाखों साल की बात किसी ने नहीं कहा, किसी धर्म वाले ने नहीं कहा। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी जब कहती है उससे ज्यादा, तो धर्मों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर धर्म ने 5000 की पुष्टि जरूर की है
जी। दीदी बात तो आपकी प्रमाणिक जान पड़ती है, लेकिन एक प्रश्न जहन में उठता है, वो ये कि कई बार वैज्ञानिक या आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करते हैं तो उन्हें कई हजार साल पहले के जीवाश्म और अवशेष मिलते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे।
वो भी सही है, क्योंकि जिस प्रकार दिन और रात का चक्र अगर लिया जाए
जी,
तो एक चक्र 24 घंटे का है।
हाँ जी,
है ना। और इस तरह से 24 घंटे का चक्र कितनी बार घूम चुका, 2015 साल से हम गिनती करते आए
जी जी जी।
लेकिन उसके पहले भी दिन और रात का चक्र तो चलता ही था।
हाँ जी,
हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ, चक्र तो चलता ही था
जी।
ठीक इसी तरह एक साल का चक्र 365 दिन का
जी,
है ना, उसको भी 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को चक्कर लगाने में।
हाँ जी,
स्वीकार कर लिया
जी जी जी।
इसी तरह अगर देखा जाए तो एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है, अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही है
जी।
और इसलिए अगर पत्थर मिले या ऐसी कोई चीज मिली तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाँ एक काल चक्र 5000 साल का, लेकिन ऐसे कितने 5000 साल के काल चक्र घूम चुके हैं
जी।
जब कहा जाता है कि पृथ्वी अलग हुई सूर्य से, ठंडी हुई, और उस समय, तो वो समय का जो है गिनती वो करते हैं। दूसरी बात कि कार्बन डेटिंग से ये लोग निकालते हैं, वैज्ञानिक लोग, आर्कियोलॉजिस्ट, कि भाई ये पत्थर इतने साल पुराना है, ये चीज इतने साल पुरानी है। लेकिन कई बार कार्बन डेटिंग का भी कभी कभी एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है हमको। ऐसे ही हमारे सामने एक भाई आए थे, उन्होंने, वो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो और उसके दोस्त, उनको जब कार्बन डेटिंग सिखाया जाता था कॉलेज में, तो बच्चे शैतानी तो करते ही हैं, कॉलेजियंस तो खास शैतानी में देखने की खातर भी जाते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि एक फील्ड में जब ले गए उनको कार्बन डेटिंग करने के लिए, तो पत्थर की खुदाई करवाई
जी।
नीचे से एक पत्थर निकाला,
हाँ जी,
और नीचे से एक पत्थर निकाला, तो ये दोनों ने क्या किया कि उस पत्थर के दो टुकड़े कर दिए
जी।
दो टुकड़े करके एक टुकड़े को वापस उसी जगह पर गाड़ दिया
जी,
और उसके ऊपर निशानी लगा दी, कोई पेड़ आदि लगा दिया, और वहां कुछ बना दिया ताकि उनको पता रहे कि कहां पर उन्होंने गाड़ा है। इस पत्थर की कार्बन डेटिंग किया, और कार्बन डेटिंग करके जो साल निकला था उस हिसाब से उन्होंने देखा, और फिर उन्होंने बताया एक साल बाद पुनः उसी स्थान पर गए
जी,
वो दूसरा जो हाफ गाड़ा हुआ था उसको निकाला, उसका कार्बन डेटिंग किया,
हाँ जी,
अलग आया। तो ये तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि कार्बन डेटिंग से उनको एक्यूरेसी नहीं मिल सकती है
जी,
है ना। ये तो मैंने तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन जिन्होंने प्रयोग किया उन्होंने मेरे साथ जब शेयर किया तब मुझे पता चला
कि हाँ, करके बताया,
खुद आकर के बताया कि ऐसा होता है
जी,
कि ये तो एक राउंड अबाउट फिगर उनको मिल जाता है, एक्यूरेट फिगर नहीं निकाल सकते हैं
जी। दीदी, तो हम समझ सकते हैं कि कई बार प्रश्न ही नहीं उत्तर भी दुविधा में डाल देते
जी।
पर एक प्रश्न और है मेरे जहन में जिसका मैं जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगा। हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी ये मानते हैं कि इस सृष्टि में हो रही हर घटना पुनरावृत होती है, हूबहू रिपीट होती है, इसकी क्या पुष्टि हो सकती है?
ऐसा है कि जैसे कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप किसी स्थान पर पहली बार जा रहे हैं
जी,
और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं पहले भी यहां कहीं कभी आया हूं
जी, जी।
ये जैसे एक और ऐसा ही दृश्य
मैं देख
जैसे मैं देख चुका,
ऐसा होता है,
ऐसा कई बार होता है, कई लोगों को होता है
जी।
तो ये जो आत्मा के अंदर एक प्रकार की स्मृति में जो रिकॉर्ड है,
हाँ जी,
वही स्पष्ट करता है कि जरूर है कि 5000 साल के बाद जो पुनरावृत हो रहा है, तो उसी में उसको वो याद, वो स्मृति कभी कभी हमें आ जाती है।
पर दीदी, हम तो सोचते थे कि हमें शायद कोई सपना अपना आया हुआ है, पहले से हमने देखा हुआ है।
नहीं, सपना नहीं देखा, वो स्थान पहले कभी देखा ही नहीं था, लेकिन जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैंने ये एग्जैक्ट यही चीज, सब चीजें वैसे ही रखी हुई, और मैं भी इसी स्वरूप में अपने आप को देख रहा हूं
जी, जी।
कभी कभी ऐसा आभास होता है। तो ये इसीलिए कि आत्मा में जो स्मृति है वो स्मृति उस वक्त जागृत हो जाती है, और कभी कभी होती है। दूसरी बात ये पुष्टि है उसकी कि जैसे आज ज्योतिष है
जी,
ज्योतिष लोग कह देते हैं कि भाई भविष्य में ऐसा ऐसा होगा,
हाँ जी।
अब होगा जब कह दिया तो वो कैसे बता दिया? कहने का भावार्थ के समय का योग पहले भी कभी हुआ था
जी,
और वो समय का योग जब पुनः आता है तो वैसे होगा, तभी वो बता सकते। अगर वो होना ही नहीं है, अगर ये फर्स्ट टाइम है, तो वो कभी भविष्य बता ही नहीं सकते कैसा ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है, नहीं बता सकते। लेकिन आज जब कई लोग पहले से ही कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों ने अपने मृत्यु तक को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई फलाने दिन इसी कंडीशन में ऐसे स्थिति में हमारी मृत्यु होगी। मुझे याद आता है अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी एक भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी माताजी थी, उन्होंने हमें बता दिया था कि ये दिन गुरुवार का दिन होगा, ये तारीख, इस दिन सवेरे इतने बजे मैं अपना ये पुराना शरीर छोड़ दूंगी
जी।
और इसीलिए आप घर से कोई भी बाहर नहीं जाना।
जी जी दीदी, पहले समाज में ऐसे
कई बुजुर्ग ऐसे कहते थे, तो ये बात वो इतनी एक्यूरेट कैसे बता सकते हैं? मैं ये नहीं कहती हूँ चलो ऋषि मुनियों ने बताया वो बात अलग है, कोई सन्यासियों ने बताया वो बात अलग है कि इनके पास एक ऐसी सिद्धि हो, लेकिन कहीं गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ धर्म में रहने वाले, नॉर्मल जीवन जीने वाले, जिनके पास और कोई चीज बता नहीं सकते, लेकिन मृत्यु उन्होंने बता दी कि हमारी मृत्यु इतने बजे इस वक्त इस तरह होगी
जी।
है ना? और जब उस माताजी ने कह दिया कि सारे बच्चे उस समय घर में रहे, कोई बाहर नहीं जाए
जी।
बच्चों ने सोचा माताजी ऐसे बूढ़े हैं, बोल देते होंगे। एक लड़का बाहर चला गया किसी काम से और सचमुच उसको तुरंत फोन आया, तुम वापस घर आ जाओ, माताजी का अंतिम समय चल रहा है। और अच्छी थी, लेकिन जो टाइम उसने दिया था, गुरुवार का दिन बताया था, वही दिन पर उसकी मृत्यु हुई
जी।
तो ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो जरूर वो चीज हुई थी, पुनः होगी, जो स्मृति जागृत हो गई इसीलिए बता दिया उन्होंने।
यानी इंट्यूशन का आधार घटनाओं का रिपीट होना है
जी, तभी तो वो वाइब्रेशन कैच कर सकते, नहीं तो कैसे कैच कर सकते। इसीलिए ये बातें जिसको हम कहे कि हाँ इसका कोई ऐसा बेस नहीं है, क्योंकि ये एक सिक्स सेंस की बात है और सिक्स सेंस उसको कह दिया व्यक्ति ने, लेकिन वास्तव में वो आत्मा की स्मृति जब जागृत हो जाती है तब वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं, बता देते हैं, स्पष्ट बता देते हैं। तो यही आधार है कि भई हम और तो कोई बेस नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये चीजें ऐसे ही नहीं होती है, ये चीजों का बेस है और वही यही है कि ये पुनरावृत होता है इसीलिए। और तीसरी बात कि जैसे साइकिल है, तो आज मानो कि एक चेन हमले कड़ी, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई, दूसरी तीसरी से जुड़ी हुई, और इस तरह से अगर साइकिल बना दे उसका गोल कि लास्ट कड़ी फिर फर्स्ट कड़ी के साथ जुड़ जाती है
जी,
है ना? ठीक इसी तरह ये जो साइकिल है उसको कहा ही जाता है कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल, यानी कॉज है उसका इफेक्ट है, वो इफेक्ट का फिर एक कॉज बनता है
जी,
वो कॉज का इफेक्ट है। तो ये कड़ी जुड़ती जा रही है और वो कड़ी जुड़ते 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 जब लास्ट कड़ी आती है कॉज और उसका इफेक्ट, यानी पुरुषार्थ प्रारब्ध। तो इस तरह से ये साइकिल है। तो जब एवरीथिंग रिपीट्स इन अ साइक्लिक पैटर्न, क्योंकि ये संसार जो है ये भी लीनियर नहीं है, साइक्लिक
जी,
तो हर चीज इस दुनिया के अंदर साइक्लिक पैटर्न में ही चलती है, कोई भी चीज लीनियर पैटर्न में नहीं चलती है, चाहे वो जन्म और मृत्यु का चक्र है, सुख और दुख का चक्र है, पाप और पुण्य का चक्र है, ऐसे हर एक चक्र के रूप में दिखाया है। तो जब चक्र है तो चक्र माना वो सारी कड़ियां एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है और इसलिए वो कड़ी जब लास्ट कड़ी पुनः फर्स्ट कड़ी के साथ जुड़ जाती है तो इस तरह से ये साइकिल फॉर्म होता है
जी, और फिर वो चक्र
चलता है। इसलिए चक्र हूबहू चलता है
जी,
पुनरावृत्त होता है
जी। दीदी आप जो बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बौद्धिक आधार पर विवेकपूर्ण रीति से ही हमें ये समझना होगा
जी,
क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों हमारे साथ भी और आपके साथ भी हुआ होगा कि हम किसी महफिल में बैठे होते हैं और हमें एकदम से लगता है कि ये दृश्य मेरे सामने कभी हो चुका है या पहले भी मैं कभी इसी तरह के सीन में फिट था, बैठा था, तो ये इंट्यूशन होना, ये आभास होना, और जैसा दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई कि ज्योतिष भी अपने प्रेडिक्शन तभी कर सकते हैं जब उन्हें उस पुनरावृत्त होने का एहसास होता है या आभास होता है। दीदी, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं और इतने गहरे विषय पर आपने सरलतम रूप से हमें समझाया है, मैं दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सृष्टि चक्र को विस्तार से समझा। कई भ्रांतियां इसको लेकर के हमारे मन में थी कि आखिरकार हम समय के कौन से पड़ाव पर हैं। अब ये तो स्पष्ट है कि हम कलयुग के अंतिम चक्र में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में जरूर उठ रही होंगी। इन्हीं सभी जिज्ञासाओं के उत्तर के साथ अगली कड़ी में आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।